ओम शांति। ज्ञान योग तपस्या भक्ति में आप सभी लुधियाना और उससे संबंधित सेवा केंद्रों से पधारे हुए भाई बहनों का सबसे पहले तो शांतिवन के इस नए मेडिटेशन हॉल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जैसा समय चल रहा है ऐसे समय में हिम्मत रख करके आप सब बाबा की वरदान भूमि में पहुंचे हैं तो अवश्य ही बाबा आपको प्राप्तियों से भरपूर करेंगे, वरदानों से भरपूर करेंगे। जो समय यहाँ मिला है बहुत अमूल्य है और उसका पूरा पूरा लाभ लेना है। आप सभी को ये 3 दिन 4 दिन जितने भी दिन बचे हैं पूरा मौन में रहना है। बहुत जरूरी हो तभी बात करें, अगर इशारों से काम चल सकता है तो इशारों से चलाएं। और एक बात जो ध्यान में रखनी है कि सुरक्षा नियमों का भी पूरा पालन करना है, अपनी भी सुरक्षा और दूसरों की भी उसमें सुरक्षा है। तो जब भी आप एक दो से बात करते हैं तो पता ही है कि 2 गज की दूरी होनी चाहिए, मास्क लगा हुआ होना चाहिए, हैंड्स को बार बार आप सैनिटाइज करते रहें। और अपने यहाँ कोई भी सीनियर से आप बात करते हैं, समझो जो क्लास कराने हमारे वरिष्ठ भाई बहने आते हैं उनसे मिलना चाहते हैं तो भी दूरी से बात करें, एकदम नजदीक आकर के बात नहीं करें। और अगर किसी को खांसी है, जुकाम है, लगता है कि थोड़ा तबियत ढीली है तो क्लास में ना आए हो सके तो, पर अगर आना ही है तो फिर पूरी टाइम मास्क लगा करके ही बैठना है। अगर खांसी आ भी जाती है, अभी मौसम बदलता है तो ऐसा होता है कि छींक आ जाती है, खांसी आ जाती है, तो बिल्कुल रुमाल रख करके मास्क लगा हुआ होना चाहिए और तभी आप करें, क्योंकि आपके साथ और भी भाई बहने बैठे हैं और ये वायरस तो अदृश्य है, उसका पता ही नहीं चलता है कि कई एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं कि है या नहीं है। तो जितना हम ध्यान रखेंगे उतना हम भी सेफ रहेंगे और दूसरे भी सेफ रहेंगे। आदरणीय गीता बहन जी हैं हमारे सामने, आपका भी हम स्वागत करते हैं एक हाथ की ताली से। पट्टी में हम एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे। गीता बहन जी से आप परिचित हैं, आप जैसा आपका नाम है ऐसे ही नाम के अनुरूप आपका जीवन है। गीता की शिक्षाओं को पूरी तरह से आपने जीवन में धारण किया है। आप गीता ज्ञान, मैं कहूंगी सत्य गीता ज्ञान देकर के अनेक आत्माओं के जीवन को ऊंच श्रेष्ठ बनाते रहे हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। आप बहुत ही त्याग तपस्या दिव्य गुणों की मूर्ति हैं, आपका जीवन अनेकों के लिए प्रेरणा है। ऐसे आप 1969 में ज्ञान में आए, 1972 में आप समर्पित हुए गुजरात में, अनेक सेवा केंद्रों पर आपने पहले सेवा की, फिर भावनगर सब जोन के आप संचालिका भी रही करीब 14 वर्षों तक, और फिर 93 से आप यहाँ शांतिवन अपना मधुबन हेडक्वार्टर, उस समय शांतिवन तो नहीं था, मधुबन हेडक्वार्टर में ही आप सेवाएं दे रहे हैं। तो ज्ञान सरोवर जब बना तब वहाँ आवास निवास और रिसेप्शन के आप प्रभावी रहे, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपकी सेवाएं रही और उसके बाद आप यहाँ शांतिवन में कुछ वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप बहुत ही अनुभवी वक्ता हैं, मधुबन में जितने भी कार्यक्रम होते हैं सभी कार्यक्रमों में आपके क्लासेस रहते हैं, विदेशों में भी अनेक स्थानों पर आपने जाकर के, अनेक देशों में जाकर के अपनी सेवाएं दी हैं, अनेक विषयों पर आपके वक्तव्य होते रहते हैं। आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं और उसके साथ साथ बिजनेस विंग के भी आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। तो अभी आपके लिए भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है वो स्पष्ट करेंगे।
ओम शांति। बाबा के बेहद घर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वैसे तो सितंबर मास में आना था, पर तीन ग्रुप होने के बाद बहुत कोरोना के केसेस निकले तो स्टॉप हो गया प्रोग्राम. अब सब कुछ स्वस्थ है, व्यवस्थित है, उस वातावरण में आप आई हैं और ये स्पेशल चांस है नए भवन में, नए हॉल में आपकी ये भट्टी है. इस हॉल के वाइब्रेशंस भी इससे पावरफुल बन जाएंगे. सभी को अच्छा लग रहा है ना? हाँ, रात को कितने बजे पहुंचे? ओहो हो, अच्छा. आराम तो हुआ नहीं पूरा है? मधुबन जहाँ नेचुरल योगी बनने का हम सबको वरदान मिलता है, कोई पुरुषार्थ हम करें न करें, परंतु वातावरण ऐसा है बाबा के इस तपोभूमि का, एक अपनी अलग ही न्यारी दुनिया है जहाँ दिन रात ज्ञान और योग, सेवा और पुरुषार्थ चलते हैं. तो मेहनत नहीं करनी पड़ती. यहाँ कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ये बाबा का यज्ञ है. तो नेचुरल ही बाबा याद रहते. लॉकडाउन के दिनों में हम सबको भी मौका मिला तपस्या करने का, पढ़ाई करने का. आप सभी ने भी अपने अपने घर में बैठकर अपना पुरुषार्थ किया. बाबा ने ज्ञान ऐसा दिया है, हम आत्माएं ऐसी जगी हुई हैं कि हर हाल में हम पुरुषार्थ कर लेते. पारिवारिक मिलन का अपना आनंद है, बाबा के घर के वायुमंडल का अपना आनंद है, पर व्यक्तिगत पुरुषार्थ और तपस्या का भी अपना एक आनंद है. अनुभव किया होगा ना सभी ने? हम सभी कोई परिस्थिति के कारण पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं. ये हम सबके जीवन की पद्धति है, लाइफस्टाइल है. ये हमारा और कोई लाइफ नहीं है. दुनिया में जो भक्ति करते हैं या जिस भी धर्म संप्रदाय में जाकर पुरुषार्थ करते हैं, तो लाइफस्टाइल अलग है और कुछ समय निकालकर भक्ति भजन कर लेते हैं. पर हम सब ने ज्ञान और योग को पूरे जीवन के लिए अपनाया. इसलिए हमारा जीवन कोई अलग चीज नहीं है. सेंटर हो या ना हो, संगठन हो या ना हो, हमारी दिनचर्या वही है योगी जीवन की. इसलिए मैं समझती हूं कि कोई 2 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से इसी जीवन पद्धति में चल रहे, अब ये नेचुरल है, अब इसको हम पुरुषार्थ नहीं कहेंगे, रूटीन है ये हमारा। रोज अमृत वेले उठना, रोज मुरली क्लास करना, दिन भर कर्म योगी बने रहना, शाम को विशेष फिर अभ्यास करना योग का, और रात को अपना दिन भर का हिसाब देखना, ये हमारी रूटीन है, डेली हम करते हैं। ये अब हमें पुरुषार्थ नहीं लगता, नेचुरल लगता है ना। जैसे कोई ऐसा नहीं कहेगा ना, मैं तो रोज नहाता हूँ, रोज खाता हूँ, ये कोई कहने की बात नहीं, ये दिनचर्या शरीर की बनी हुई है, वो कोई हमें विशेष नहीं लगती। इट इज मस्ट कि ये हमें रोज करना ही है, रोज सोना है, रोज उठना है, रोज नहाना है, रोज खाना है, रोज श्रम करना है, ये हमारी दैनिक दिनचर्या है। इसको आप पुरुषार्थ नहीं कहते, इसके अलावा जो करते हैं तो कहेंगे कि आज हमने विशेष ये काम किया। तो ये हमारा नेचुरल है, विशेष तब कहेंगे जब हम कुछ और ज्यादा पुरुषार्थ। और वो हम क्यों करते हैं, अधिक तपस्या करते हैं, अधिक पढ़ाई करते हैं, अधिक अनुभव की विचारों की लेन देन करते हैं, अधिक सेवा करते हैं, वो क्यों करते हैं? हाँ, क्योंकि हमारा लक्ष्य है संपूर्ण बनना। मैक्सिमम करना ये हमारा लक्ष्य है। क्योंकि हम ज्ञान के स्वरूप बनना चाहते, जैसे आज भी बाबा ने कहा कि हर ज्ञान गुण शक्ति का अनुभव की अथॉरिटी बनना है, और जिस समय से हम अभी गुजर रहे हैं दुनिया के हिसाब से भी ये स्पेशलाइजेशन का समय है। कॉमन पढ़ाई की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, कोई MBBS हुआ नथिंग, पर कुछ स्पेशलाइजेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू है। तो समय स्पेशलाइजेशन का है, एक्सपर्टाइजेशन का, इतना डेप्थ और इतना विस्तृत ज्ञान है हर चीज का कि उसका कोर्स कराया जाता है, डिग्री ली जाती है। बचपन में इवेंट मैनेजमेंट कभी सुनाई नहीं था, हर कोई अपने आप ही कर लेते थे। फूड सर्विंग में भी कितनी विशेषताएं आ गई हर फील्ड में. आप देखिए कोई आई स्पेशलिस्ट, पर उसमें भी कोई रेटिना स्पेशलिस्ट, कोई कैटरेक्ट का स्पेशलिस्ट है ना, उसमें कितना डेप्थ आ गए. नई टेक्नोलॉजी आ गई. तो ऐसा नहीं है कि हम कोई विशेष पुरुषार्थ कर रहे हैं, हर फील्ड में ये हो रहा है. और इसलिए लोग आगे बढ़ने के लिए, कंपटीशन में विन करने के लिए मेहनत करते हैं, इस प्रकार के कोर्सेस करते हैं. उनको नहीं पता है भगवान आए हैं, दुनिया बदल रही है, इसलिए वो दुनियावी फील्ड चुनते हैं. पर हमें ये सत्य पता है कि स्वयं भगवान आए हैं और ये महापरिवर्तन का समय. हम जानते हैं, इसलिए हम सभी भी साधारण पुरुषार्थी नहीं रहना चाहते. हम तीव्र पुरुषार्थी बनना चाहते. हम सिर्फ ज्ञान में चलना नहीं चाहते, हम उड़ना चाहते. ये हमारी अपनी हरेक की महसूसता है और हमारा अपना ये आत्म मंथन है हरेक का कि हम समय संगम का और बाबा का आना, पूरी प्राप्ति उससे हम कर लेना चाहते. भगवान ने सत्य तो हमें बता दिया है, पर उस सत्य को गहराई से समझना और बार बार महसूस करना और अपना लक्ष्य बनाना, ये हरेक का अपना है. ये हरेक का अपना पुरुषार्थ है कि हम कितनी रियलाइजेशन में रहते. और जब उस महसूसता में रहते हैं तो हमें कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं. व्यक्ति अपने आप पुरुषार्थ करता है, अपने आप वो फोकस हो जाता है कि चलो आवश्यक और जो कुछ है वो कर लिया, बाकी टाइम वेस्ट नहीं करना. हम अपने मूल लक्ष्य में फोकस रहते. ये हमारा सौभाग्य है कि शिव बाबा के सत्य ज्ञान पर प्रतिदिन वर्ल्ड ड्रामा की नंबर वन आत्मा ब्रह्मा बाबा, उसका चिंतन रोज हम मुरली में सुनते हैं और देखते हो ना कि बाबा का कितना उमंग उत्साह रहता है कि पूरी प्राप्ति कर दी, पूरा वर्षा लेना है, पूरा सत्व प्रधान बनना है, संपूर्ण पावन बनना है. कितना बाबा का अपना उमंग उत्साह रहता है. क्योंकि सत्य को पाने के लिए आधा कल्प मेहनत की, सत्य को पाने के लिए आधा कल्प मेहनत की. सत्य मिलने के बाद कितनी मेहनत करनी चाहिए, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि सत्य वो बीज है जिसमें बहुत पोटेंशियल है, पर उस बीज को लाइफ में लाना, डेली उसको नर्चर करना, उस ज्ञान को गुणों में अंकुरित करना, बदलना, पुष्पित फलित करना, यह हर आत्मा की अपनी जिम्मेवारी। भगवान तो सत्य बता देता है कि रियलिटी क्या है। आपकी रियलिटी क्या है, परमात्मा की रियलिटी क्या है, इस वर्ल्ड ड्रामा की रियलिटी क्या है, भगवान सत्य उजागर करता है। भक्ति में गाते थे ना कि अगम निगम के भेद खोले, वो सीक्रेट्स ओपन करता है कि ट्रूथ सत्य ये है। उस सत्य को प्रैक्टिकल लाइफ में लाना और उनके रिजल्ट्स पाना, वो हम आत्माओं का पुरुषार्थ। विज्ञान प्रकृति का वो सिद्धांत स्पष्ट करता है, पर उस सिद्धांत के आधार पर टेक्नोलॉजी डेवलप करना, उस टेक्नोलॉजी के आधार पर वो मशीन्स, वो साधन बनाना और उससे सुविधाएं पाना, दुनिया भी करती है ना। तो बाबा आकर के सत्य बताते हैं, उस सत्य के आधार पर विजडम अपने आप में लाना, उस विजडम को कर्म में लाना, जीवन बनाना, ये हम आत्माओं का पुरुषार्थ। ये जितना पुरुषार्थ चलेगा उतना ज्ञान के एक एक सत्य का सुख हमें मिलता है। एक एक सत्य पर आप विचार करें, जो हमें 7 दिन के लेसन में सिखाए गए, पर उससे हमने सबक क्या लिया, विवेक क्या प्राप्त किया, विजडम क्या प्राप्त किया। आत्मा का लेसन मिला, उससे क्या सबक सीखा, कौन सी शिक्षाएं हमने धारण ना। लेसन तो दुनिया में करोड़ों को हम सबने दिए न, पर जिसने सबक सीखा वो आत्माभिमानी बन गए, वे आत्मचिंतन में रहने लगे, वे आत्मदृष्टि से देखते हैं, आत्मधर्म में स्थित होकर कर्म करते हैं। और फिर रोज अभ्यास करके हम उसमें मास्टरी पाते हैं, परिपक्व बनते हैं। अगर ये हमारा व्यक्तिगत पुरुषार्थ चलता है तो खुशी, तो प्राप्ति, अनुभूति। सिर्फ ज्ञान सुनते हैं पर प्रैक्टिकल लाइफ में हम अप्लाई नहीं करते हैं तो विद्वत्ता, नॉलेज, फिर बोझ भी लगेगा और ड्राइनेस आएगी, फिर कहेंगे मजा नहीं आता है, क्या रोज वही वही नहीं है, उसमें बहुत आनंद सुख शक्ति भरी हुई। तो हमेशा बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि संगठन में रहते हुए सदा व्यक्तिगत पुरुषार्थ में रहो, जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, है ना, सभी विद्यार्थियों को एक समान रूप से पढ़ाया जाता है, 50 विद्यार्थी है, 40 है, 100 है, सबको एक लेसन साथ दिया जाता है, पर कौन सा विद्यार्थी नंबर लेता है, कौन सा, जो होमवर्क करता है, जो अच्छा होमवर्क करता है, जो अच्छा फॉलोअप करता है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को पहले से स्पष्ट कहा है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जो जितना रीडिंग लर्निंग स्टडिंग रिविजन करता है तो उससे आनंद शक्ति अवेयरनेस प्राप्त होती है। बाबा के ज्ञान से कितनी अवेयरनेस आती है, आत्मा कितनी जाग जाती है। जब ज्ञान नहीं था तो क्या थे हम, है ना, कितना महसूस होता है ना कि देखने में कहीं सोचते हैं ना कि भी बाबा तो सिर्फ ज्ञान ही देते हैं, परंतु ज्ञान कितनी बड़ी संपत्ति बाबा देते हैं। आज ज्ञान नहीं है उन लोगों को भय लगा, चिंता लगी, कोरोना के दिनों में कितने टेंस हुए, टकराए, दुखी हुए, उनको शक लगा ये क्या है, पर बाबा के बच्चे हर हाल में क्या रहे, खुशहाल रहे, क्यों, बाबा ने मेंटली हमें तैयार कर लिया रोज ज्ञान सुनाकर, बाबा ने हमें रोज ज्ञान सुनाकर तैयार कर लिया ना, इसलिए कोई भी परिस्थिति आती है बुद्धि में क्या जवाब आता है, पता है बाबा ने हमें बता दिया है कि ये सब ड्रामा में होना है, वेल इन्फॉर्म्ड है, नॉलेजफुल बनाया, तो हमें कोई बात का शक नहीं लगता है, आघात नहीं लगता कि ये क्या हो गया, ऐसा कैसे, हमें कुछ मुश्किल नहीं लगा, चाहे वो डिस्टेंसिंग रखना या कुछ भी करना, क्योंकि हमें तो अभ्यास है खुद के शरीर से भी न्यारा रहना, व्यक्ति से न्यारा रहने की सिर्फ बात नहीं है, पर हमें खुद खुद के शरीर से ही अलग रहना है, न्यारा रहना है। तो नॉलेज कितना जरूरी है, ऐसी परिस्थितियों के समय ज्ञान ही हमें स्थिर रखता है, एकरस रखता है, हम अपने आप को संभाल सकते हैं, हम अपने आप को खुशी में रख सकते हैं, क्योंकि रोज वही पढ़ाई हम करते हैं। ये अभ्यास, ये ज्ञान, इस प्रकार से चिंतन जीवन में कितना जरूरी है, और हमें अपना भी असेसमेंट हो गया है ना इन दिनों में, हरेक का अपना भी असेसमेंट हो गया ना कि भाई हम कहां तक ताकत में, अपने आप में कितने शक्तिशाली हैं, हरेक को अपना नाप आ गया कि हम अपने पांव पर कहां तक है। और अल्टीमेट आखिर तो हर आत्मा को आप ही अपनी नाव को पार लगाना है। अभी कुछ दिनों पहले ही मुरली थी ना, तुम्हें अपना बेड़ा अवश्य पार करना। बाबा हमें अंदर श्रद्धा में नहीं रखते हैं कि बाबा पार करेगा, ऐसा नहीं, बाबा हमें सत्य बता देता है कि नहीं, हरेक को खुद खुद की नैया पार करनी। भगवान ज्ञान देंगे, समझ देंगे, प्यार देंगे, हिम्मत भरेंगे, शक्ति देंगे, मदद करेंगे, पर किसको किसको जो खुद करेगा, है ना, जो प्रयास करेगा, जो पुरुषार्थ करेगा, फिर तो उनकी मदद है ही है। हमेशा जब भी आप आते हैं सीजन में भीड़ ही भीड़ होती है कई बार परिवार तो अच्छा ही है, एक दूसरे मिलते हैं, खुशी होती है, पर अंदर कई बार ये भी इच्छा होती थी कि एकांत मिले, शांति से हम पुरुषार्थ कर सके, तो वो भी ड्रामा ने मौका दिया। आगे कब नॉर्मल सब कुछ होना है वो तो किसी को पता नहीं है कब होना है, पर जैसा भी है हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ना। महारथी माना जो कोई भी बात में अटक न जाए, बस कहीं भी रुकना नहीं, परिस्थिति कैसी भी हो, जिनके पास सब कुछ था, धन था, साधन थे, सुविधाएं थी, है ना, खाने पीने रहने की सब कुछ था, पर अपने आप को संभालने की शक्ति नहीं, अपने आप को खुश रखने की विधि नहीं, तो सब कुछ होते भी खुश नहीं रह पाए। और ये भी एक मैं समझती हूँ सीखने को मिला कि जो बाबा नहीं कहते अचानक, है ना? अब देखो जब से पैदा हुए इसी रीति से हम जीते रहे, ऑल ऑफ सडन स्टाइल बदल गई, ज्ञान होते हुए भी हम अपने आप में कहां तक, हाँ, अंदर गहराई में जा सके, स्थिर रह सके, एकाग्र हो सके, आज 50 एक साथ बैठ के पुरुषार्थ करें और कोई भी कारण से 5 हो जाए तो कितना फर्क पड़ता है, है ना? भी कहाँ गए कहाँ गए, सब आए नहीं, अभी तक आए नहीं, हम ही आए, जो बैठे हैं वो भी एकाग्र नहीं हो पाते तो हम कितने आधारित है देखिए, है ना? तो समझ में आता है कि द्वापर युग में या भक्ति में कैसे अकेले अकेले जंगलों में गुफाओं में बैठ के उन्होंने तपस्या की, है ना? क्या क्या मेहनत की होगी अपने आप पर, तो लगन इतनी बाबा से लगे कि हम अकेले भी मगन हो सके। तो ये बहुत अच्छा मौका है, बाबा ने हम बच्चों को सब कुछ दे दिया है, इसलिए बाप दादा भी साक्षी हैं, हाँ, अब आते नहीं हैं, साथी बन के पढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि पढ़ा दिया ना, सूक्ष्म में मदद कर रहे हैं, हम आत्माओं को देख रहे हैं। तो अब ये बहुत जरूरी है कि हम साइलेंस में बैठ के खुद खुद से बात करें कि अब मुझे क्या करना है, बहुत पढ़ाई भी मिली, प्यार भी मिला, पालना भी मिली, और किसी की गिनती न करे पर बाप दादा ने स्वयं हमें कितनी पालना है ना, एक एक मुरली में कितना मार्गदर्शन बाबा ने हमें, अब ज्ञान जीना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है सोचते हैं ना कई बार, अब ज्ञान जीना है, संगम के अंत तक, जीवन के अंत तक, क्योंकि हम जो लक्ष्य लेकर बैठे हैं, सतयुग और त्रेता युग में हम नेचुरल दिव्य होंगे, कोई पुरुषार्थ वहां नहीं, नेचुरल दैवी बुद्धि वाले होंगे, बाबा कहते हैं ना वहां किसी की राय लेने की जरूरत नहीं रहेगी, खुद की ही बुद्धि इतनी दिव्य होगी, वहां नेचुरल है, नेचुरल आत्माभिमानी, नेचुरल कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत, काल जीत, नेचुरल प्योर, बाबा कहते ना पवित्रता की अविद्या होगी, आत्मा तृप्त, संतुष्ट, प्रसन्न, वो स्टेज अभी हमें बना, वो स्टेज अभी हमें बनानी, तो संगम के अंत तक, ये अंत पर हम पहुंच गए, अभी मुझे नेचुरल दिव्य, नेचुरल डिटैच, आकर्षण से मुक्त, तो ये जब एकांत में शांत में अपने आप से बैठते हैं तो हम अपने रिजल्ट को देख पाते हैं कि हम याद करा करा कर अपने आप को ठीक रखते हैं, युद्ध करके ठीक रखते हैं, या अब नेचुरल इजी, जो नेचुरल है वो इजी होता है, जो इजी है वो ही लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं, मुश्किल हो तो जीवन भर नहीं कर पाते, पर जो सहज है वो हम जीवन भर कर सकते, जब हम सभी बातों से फारिग होकर भट्ठी में बैठते हैं, योग तपस्या में बैठते हैं, विशेष पुरुषार्थ में बैठते हैं, तो हम ये अपने में देखें कि अगर हमारा भविष्य देवता का है तो बाबा कहते हैं ना कि वो स्थिति यहां बनानी है, वो स्टेज मुझे यहां बनानी, बाबा कहते हैं जिस अवस्था से संगम को एंड करेंगे उसी स्थिति से सतयुग आरंभ करेंगे आप, क्योंकि हमारा फ्यूचर वही है, तो जिस अवस्था पर हम संगम पूरा करेंगे उसी अवस्था से सतयुग शुरू करेंगे, तो ये सारे रिजल्ट्स अपने हमें देखने हैं. नेचुरल आत्माभिमानी, नेचुरल माया जीत, नेचुरल कर्मेंद्रिय जीत. मुझे महसूस हो कि मैं आत्मा अंदर से शुद्ध बनती जा रही. अब युद्ध नहीं है, अंदर बाहर अलग नहीं है. मेरी दो पर्सनालिटी नहीं है, अंदर बाहर एक. कुछ चीज नई शुरू करते हैं तो मेहनत है, भूले हैं, थकान है, पर करते करते फिर इजी हो जाता है. वही रिजल्ट हमारा इसमें भी आए कि शुरू में मेहनत, अपने आप के पीछे मेहनत, धीरे धीरे फिर नेचुरल सहज. अब हमें समझ में आता है कि अब चाहिए बस लगन और अभ्यास. बाबा कहते हैं ना, धुन लग जाए, लगन लग जाए, दिन रात ये ओना रहे. मुझे बनना है, मुझे करना ही है. तो अंतर्मुखी बनकर रोज अपने आप से जब बाबा के सामने बैठते हैं क्लास में, रोज अपने लक्ष्य को रिवाइज करना. मेरा लक्ष्य क्या है? अब कहा जाता है ना, लक्ष्य सदा ऊंचा होना चाहिए, साधारण नहीं. लक्ष्य सिद्ध नहीं कर पाए फिर भी वो माफ हो जाता है, लक्ष्य ही नीचा रखे वो माफ नहीं. तो ये खुद से पक्का करना है लक्ष्य क्या है. नंबर वन आत्मा, जिसने लक्ष्य सिद्ध किया, ब्रह्मा बाबा मम्मा, ब्रह्मा बाबा ग्रस्ती थे ना, बचरवाल थे, जिम्मेवार थे, परिवार वाले थे. बाबा ने तो ये नहीं सोचा ना कि हम ग्रस्ती हैं, बूढ़े हैं, क्या कर सकते हैं इतना, ऐसे तो नहीं सोचा. बाबा की सोच क्या ना, जब कोई मेहनत की सेवा होती थी बाबा भी करते थे साकार में, तो कई बच्चे बाबा को कहते थे कि बाबा आप ये क्यों कर्मणा सेवा करते हैं, हम हैं ना इतने बच्चे, हम करेंगे ना. तो बाबा क्या जवाब देते थे कि बच्चे कल्प कल्प, जब जब शिव बाबा आएगा, मैं तो बूढ़ा ही होऊंगा, तो क्या मैं सेवा करके भाग्य न बनाऊं, यज्ञ सेवा न करूं. बाबा का चिंतन ये था, आयु भी थी, परिवार भी था, अलौकिक परिवार की जिम्मेवारी भी थी, पर वो ही नंबर वन बने। मम्मा युवा थी, कुछ भी धन नहीं था और नंबर वन बने। दोनों एग्जाम्पल इतने यूनिक है हमारे सामने। मतलब सांसारिक, लौकिक, दैहिक, भौतिक कोई भी परिस्थिति नंबर वन बनने में आड़े नहीं आती है। वो कारण नहीं बन सकते। हमें भी अपने आप को ये चीज बतानी। तो रोज बाबा कहते हैं ना, लक्ष्य पक्का कर। और वही लक्ष्य है तो फिर एकाग्र हो जाना है लक्ष्य के प्रति। जो लक्ष्य बनाया उसके प्रति फोकस रहना, कर्म तक, मानसिक नहीं, सिर्फ मन वचन कर्म से उस लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहना। होता है ना, मनसा में बहुत पावरफुल होता है, फिर होते होते डाइल्यूट होने लगता है कर्म में आते आते, है ना। मन में हम सोचते हैं ये करेंगे ये करेंगे, ये करने में फिर परसेंटेज डाउन हो जाता, परंतु नहीं, मन वचन कर्म से एकाग्र लक्ष्य की दिशा में और दृढ़ता से पुरुषार्थ। जो आज बाबा ने कहा, तपस्या माना दृढ़ता से अभ्यास कर। दृढ़ता चाहिए बस। सहज है, मुश्किल नहीं है, मेहनत का नहीं है, पर ऊंचा तो है ना, मंजिल ऊंची तो है, इसलिए अंत तक दृढ़ता चाहिए। बहुत सुंदर समय निकाल कर आप सब आए हैं, आपस में जितना हम साइलेंस में रहें, एक दो से डिटैच रहें और अपने आप में मगन रहें, तो बहुत अच्छा स्वदर्शन कर सकेंगे और अपने आप को लक्ष्य के लिए एकाग्र कर सकेंगे। पुनः दादियों की ओर से, बड़ों की ओर से और सबकी तरफ से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन। ओम शांति। खड़े हो जाएं। पहला संकल्प, स्वयं के प्रति फोकस हो जाए, अंतर्मुखी बनकर स्वदर्शन करें। राइट साइड घूम जाए, अब अपने आप को ऊंचे लक्ष्य के लिए कन्विंस करें, मुझे थोड़े में राजी नहीं होना है, पूरी प्राप्ति करनी है। ऊंचे लक्ष्य के साथ खुद को कन्विंस करें, सहमत मुझे लक्ष्य के अनुरूप डिसिप्लिन धारण कर, जिस अनुशासन में चलकर प्रैक्टिकल लक्ष्य हासिल करना, राइट साइड को मेरी हिम्मत बाबा की मदद, मेरा योग बाबा का सही हो, राइट साइड विजयी बनना ही है, मंजिल पर पहुंचना ही है, बाप समान बनकर बाबा के साथ घर जाना है और राजाई में आना है। Om Shanti.